ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद 25वां अध्याय, राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक। श्लोक संख्या 24। महत् गुणान् आत्मनि कर्तुम् ईशः कः स्तावकैः स्तावयते असतः अपि ते अस्य अभविष्यन् इति विप्रलब्धः जन अवहासं कुमतिः न वेद। महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कः स्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेस्याभिविश्यन् इति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद। महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कः स्तावकैस्तावयते सतोऽपि तेस्याभिविश्यन् इति विप्रलब्धो जनावहासं कुमतिर्न वेद। महद्गुणानात्मनि कर्तुमीशः कः स्ताव कहिस्ता। महत् महान्, गुणान् गुण, आत्मनि अपने आप में, कर्तुम प्रकट करने के लिए, ईशः सक्षम, कह कौन, स्तावकैः अनुयायियों द्वारा, स्तावयते स्तुति कराता है, असतः न होने वाले, अपि यद्यपि, ते वे, अस्य उसका, अभविष्यन हो सकता है, इति इस प्रकार, विप्रलब्ध ठगा गया, जन लोगों का अवहासम उपहास अपमान कुमति ही मूर्ख न नहीं वेद जानता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भला अनुवाद, भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें न हो। करना कि यदि वह पढ़ लिख ले तो विद्वान या महापुरुष हो जाएगा, ठगने की अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बड़ाई स्वीकार कर लेता है, वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तात्पर्य, पृथु महाराज श्री भगवान के अवतार थे, जैसे कि ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने विविध प्रकार के उपहार देते हुए पुष्टि की थी, किंतु तुरंत अभिषिक्त होने के कारण उनमें दैवी गुणों का प्रस्फुटन नहीं हो पाया था। अतः वे भक्तों द्वारा की गई प्रशंसा को स्वीकार करने के लिए उद्यत न थे। तथा कथित ईश्वर के अवतारों को राजा पृथु के इस आचरण से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दैवी गुणों से विहीन असुरों को अपने अनुयायियों की झूठी प्रशंसा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगले दो श्लोक हैं जिनमें तात्पर्य नहीं है और फिर अध्याय समाप्त हो जाता है, तो इन दो श्लोक और उनके तात्पर्यों को पढ़ेंगे और अनुवाद को पढ़ेंगे। प्रभवो ह्यात्मनः स्तोत्रम् जुगुप्सन्यपि विश्रुताः रीमन्तः परमोदराः पौरुषं वा विगहिरितम्। अनुवाद, जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। श्लोक संख्या 26। वयम् त्वविदिता लोके सुताद्यापि वरीमभि कर्मभिः कथमात्मानम् गापयिष्याम बालवत्। अनुवाद, राजा पृथु ने कहा, हे सूत आदि भक्तों, इस समय मैं अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूं, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अनुवाद दोहराइएगा। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष किस तरह है? अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देगा जो वास्तव में उसमें न हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना कि यदि वह पढ़ लिख ले तो विद्वान या महापुरुष हो जाएगा, ठगने के अतिरिक्त और क्या है। मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बढ़ाई स्वीकार कर लेता है, वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकर चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण। तो पृथु महाराज विनम्र भाव से मागध वंदीगण इनको समझा रहे हैं
कि वो ऐसे स्तुति और वंदना के लिए योग्य नहीं है। आगे चलकर यहां पृथु महाराज उनसे कह रहे हैं कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है और वो जानता है कि उसके अंदर अच्छे गुण नहीं है और कोई लोग उनकी झूठी प्रशंसा करते हैं, और अगर वो स्वीकार करे तो वो तो मूर्ख निकलेगा, फिर वो बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। झूठी प्रशंसा को स्वीकार करना ये मूर्खता की निशानी है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में बहुत कम बुद्धिमान लोग होंगे। सभी लोग अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं और ये प्रशंसा हमेशा झूठी प्रशंसा होती है, क्योंकि अगर हमने कोई कार्य किया भी हो वास्तव में, लेकिन फिर भी इसका श्रेय भगवान श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं अपनी बुद्धि से करते हैं, अपने बल से करते हैं, अपने तेज से करते हैं, अपनी योग्यता से करते हैं, लेकिन ये सब चीजें कौन हमें दे रहा है, हमें कहां से मिल रही हैं? भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं, बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, बुद्धिमान लोगों में बुद्धि मैं हूं, मैं बुद्धि देता हूं सभी को। बलम बलवतम चाहम, बलवान लोगों को बल मैं देने वाला हूं, बलवान लोगों का बल ही मैं हूं। तेजस तेजस्वी नामहम, जो बहुत तेजस्वी लोग हैं उनका तेज भी मुझसे ही आता है, मैं ही तेज प्रदान करने वाला हूं। पौरुषम ऋषु, जो भी योग्यता मनुष्यों में है या किसी प्राणी में है वो भी मुझसे आता है, मैं ही देता हूं। अब देखिए, योग्यता, बुद्धि, बल, तेज, इन चार चीजों के अलावा कोई आदमी ये चार चीज अगर न हो तो कोई भी आदमी कोई भी कार्य संपन्न कर सकता है, किसी भी कार्य में सफल हो सकता है? नहीं। और ये चारों चीजें जो हैं, जो कि कार्य संपन्न करने के लिए आवश्यक हैं, वो भगवान से आ रही हैं, भगवान दे रहे हैं। हाँ, अपने अलग अलग कर्मों के हिसाब से भगवान अलग अलग मात्रा में ये सब चीजें अलग अलग लोगों को प्रदान करते हैं। किसी ने अमुक प्रकार के कार्य किए हैं पिछले जन्म में तो उनको अधिक बुद्धि प्रदान करते हैं भगवान, किसी ने दूसरे प्रकार के कार्य किए हों उसे कम बुद्धि देते हैं, किसी को शरीर का सौंदर्य देते हैं, किसी को कुरूप बनाते हैं, ये अपने कर्मों के हिसाब से है। लेकिन फिर भी कर्मों के फल को प्रदान करने वाले तो भगवान हैं, हम उनकी ओर ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हमेशा जानता है कि मेरे हाथों द्वारा कोई काम हो भी रहा है फिर भी करने वाले वास्तव में भगवान है, क्योंकि वो बुद्धि भी उन्होंने दी, वो बल भी दिया, वो योग्यता भी दी, सब कुछ उन्हीं ने दिया है, मैं तो केवल एक वाहन हूं, एक निमित्त हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, जब अर्जुन कह रहे थे कि ये सब बड़े बड़े महारथी यहां है सामने, कैसे उनको हम परास्त कर सकते हैं, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो पहले ही मर चुके हैं अर्जुन, मैंने तो इनको मार ही डाला है। निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, कि हे सव्यसाची, तुम्हारा कर्तव्य इतना ही है कि तुम निमित्त बनो। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, वो हमेशा जानता है कि मैं केवल निमित्त हूं। हाँ, लेकिन भावना ऐसी होनी चाहिए, अच्छे कामों के लिए निमित्त मैं हूं, जब मैं बुरे काम करता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा नहीं कि हम समझे कि हम किसी का खून कर दें और कहें कि भगवान ने बुद्धि दी, भगवान ने योग्यता दी, तो वही इसके लिए जिम्मेदार है, तो हमें क्यों आप गिरफ्तार कर रहे हो और जेल में डाल रहे हो। तो ये सही भावना होती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृति के गुणों के वश में आकर व्यक्ति सोचता है कि मैं करने वाला हूं। प्रकृतेः क्रियमाणानि, क्रिया करने वाला कौन है? प्रकृति माता है, दुर्गा देवी करा रही हैं प्रकृति वो कार्य हमसे, जैसे कठपुतली चलती हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन कार्य कराने वाला कोई और होता है। तो उसी तरह से हम अभी सब बद्ध जीव हैं, और कौन हमें बांध के रख रहा है? प्रकृति। प्रकृति अर्थात माया देवी, अर्थात दुर्गा देवी अपने त्रिशूल के माध्यम से सब हमें बांध के रख रही है माया देवी, और अलग प्रकार के कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। जो व्यक्ति सत्वगुण के वश में है वो सत्वगुणी कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है, जो रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है रजोगुण के कार्य करने के लिए प्रभावित हो जाता है, और जो तमोगुण के प्रभाव में है वो तमोगुणी कार्य करने के लिए प्रभावित हो जाता है, और जो लोग तीनों के मिश्रण में है कभी इधर कभी उधर कभी इधर, जो कि एक प्राय जनसाधारण की अवस्था है। तीनों गुणों से हम प्रभावित होते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि कभी कभी सुबह हमें उठने के लिए अच्छा लगता है जब सत्वगुण का प्रभाव हो जाता है, जब तमोगुण का प्रभाव हो जाता है सोचते हैं चलो सो जाएं, आज भागवत क्लास नहीं जाएंगे, जाप के लिए नहीं जाएंगे, आज थोड़ा आराम करेंगे, तमोगुण का प्रभाव आ जाता है। तो इस तरह से ये तीन गुण ये संसार में परम है, ये तीन गुण ही सभी को वश में कर लेते हैं, और तीन गुणों की वजह से ये तीन गुण ही सारे लोगों को कार्य कराते हैं। जिस तरह से बैल के नाक में वो रस्सी डालते हैं और इस रस्सी से जो किसान है बैल को चलाता है, ठीक उसी तरह से जो माया देवी है हमें इन कड़क नियमों से बांध कर लेती है और फिर हमसे कार्य कराती है, और फिर भी हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं और हम कार्य कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। ते पीश तंत्र्याम उरुदामनि बद्धाः, ईश तंत्र्याम, ईश मतलब भगवान, तंत्र मतलब जो नियम है, उरु उरु मतलब हमारा पेट, दामनि रस्सी, बद्धा, हम सभी लोग इस संसार में भगवान के कड़क नियमों से बंधे हुए हैं, हर एक आदमी बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी सब सोचते हैं मैं स्वतंत्र हूं। इसलिए हम ये संसार में कार्य करने के लिए अलग अलग दिशाओं में प्रेरित होते हैं, लेकिन करने वाले वो हैं, और अच्छे कार्य जो होते हैं वही प्रेरणा देते हैं, वही अंदर से मार्गदर्शन करते हैं। तो इसलिए श्रेय जो है वो हमेशा भगवान को ही जाना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने लिए श्रेय स्वीकार नहीं करेगा, ये ज्ञान की शुरुआत है। तो इस तरह से पृथु महाराज तो स्वयं शक्ति आवेश अवतार हैं, वो जानते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है कभी ऐसे घमंड के वजह से झूठा जो प्रशंसा है झूठी प्रशंसा को स्वीकार नहीं करेगा। यहां पृथु महाराज कह रहे हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति की प्रशंसा की कि आप जब पढ़े लिखे हो जाओगे तब आप एक महापुरुष बनोगे, इसका मतलब क्या है? आप प्रशंसा कर रहे हो लेकिन ये प्रशंसा है या अपमान? क्योंकि आप उसे बोल रहे हो कि वास्तव में अभी आप अनपढ़ हो, ये बोल रहे हैं ना आप उनको। बोलने का ढंग दूसरा है, बस इतना ही बोल रहे हो कि अभी अनपढ़ हो, थोड़ा पढ़ लो तो अच्छा है तुम्हारे लिए। तो इस तरह से अंग्रेजी में इसको बाएं हाथ की प्रशंसा बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। किसी की प्रशंसा करते हैं लेकिन वास्तव में उसका अपमान है, वो मूर्ख है इसलिए वो समझता नहीं कि अपमान है, वो सोचता है कि प्रशंसा है। तो इसी तरह से जो भी झूठी प्रशंसा है वो स्वीकार नहीं करनी चाहिए, और भक्त जानता है कि हर एक प्रशंसा जो मुझे मिलती है वो झूठी है, कम से कम मेरे दृष्टि से ऐसे लगना चाहिए सभी को, क्योंकि जो भी हो रहा है कृष्ण की कृपा से ही हो रहा है, वैष्णवों की कृपा से हो रहा है। या संसार में हम क्या देखते हैं कि सभी लोग अयोग्य व्यक्तियों की प्रशंसा में लगे हुए हैं, और श्रीमद् भागवत में सुंदर श्लोक आता है, स्वविद वराहोष्ट खरई संस्तुत पुरुष पशु नयत कर्णपथोपेतो जातु नाम कदा क्रजः। इसका अर्थ है कि जो लोग कुत्ते, सुअर, ऊंट और गधे की तरह हैं, ये श्रीमद् भागवत का वचन है, हमारा नहीं है, तो जो इस चार प्रकार के पशु की तरह हैं वो उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जिनके कानों तक कृष्ण की कथा पहुंचती नहीं है। श्व श्व मतलब कुत्ता, विडवराह, विडवराह मतलब, वराह मतलब शुकर, विड मतलब जो मल खाने वाला, उष्ट मतलब ऊंट, खरई मतलब गधा, ये चार प्रकार के लोग होते हैं। समसुतः पशुः पुंसः, ये चार प्रकार के पशु की तरह वो मान, वो इंसान होते हैं जो कि उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जिनके कर्णों में अभी तक कृष्ण कथा पहुंची नहीं है, उस मार्ग में कृष्ण कथा अभी गया नहीं है। गदाग्रज, गदाग्रज मतलब उनकी स्तुति श्री कृष्ण की जो सारे बुराइयों से हमें मुक्त कराने वाले हैं। इसलिए इससे हम क्या जान सकते हैं कि जितना निंदनीय वो व्यक्ति है जो झूठी प्रशंसा स्वीकार करता है, उससे ज्यादा निंदनीय वो व्यक्ति है जो झूठी प्रशंसा करता है। केवल स्वीकार करना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन करना भी है। तो श्रीमद् भागवत में जो ऐसी झूठी निंदा, झूठी प्रशंसा करते हैं, उनको इन चार प्रकार के पशुओं से तुलना की गई है। अभी लोग जब झूठी प्रशंसा करते हैं तो अपने अलग अलग स्वार्थ से करते हैं, लेकिन ये चार प्रकार के पशुओं के गुण जो हैं उनमें आते हैं, इसलिए चार अलग अलग प्रकार के प्रशंसा, झूठे प्रशंसा करने वाले लोग होते हैं संसार में, जो इन चार पशुओं के पद चिन्हों में चलते हैं। तो आइए थोड़ा देखते हैं कि ये चार पशुओं के गुण क्या होते हैं और जो इनके पद चिन्हों में चलते हैं वो किस तरह से इन गुणों को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले है श्व, श्व अर्थात कुत्ता। तो कुत्ते के गुण क्या होते हैं? कुत्ता जो होता है उसका स्वभाव होता है कि वो हमेशा कोई मालिक को ढूंढता है जिसकी वो सेवा कर सके। कुत्ते का गुण होता है कि वो सेवा करे और वो लॉयल रहता है, विश्वसनीय रहता है, वो उसी व्यक्ति की जाके जो भी उसका मालिक करे, भले बेईमान हो, भले कुछ भी हो, लेकिन उस व्यक्ति के साथ में रहेगा, उसकी सेवा करेगा। लेकिन सेवा करते करते बहुत बार उसको कोई ज्यादा खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, टूटी फूटी रोटी मिल जाती है, सूखी रोटी मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो उस सेवा में लगा रहता है। तो प्रभुपाद जी समझाते थे कि जिस तरह से कुत्ते इधर उधर मालिक के पीछे भागते हैं थोड़ी सी एक रूखी सूखी रोटी के लिए, ठीक उसी तरह आजकल लोग नौकरी के लिए इधर उधर द्वार खटखटाते हैं और सामने एक कागज का टुकड़ा रखते हैं जिसको हम डिग्री सर्टिफिकेट कहते हैं कि हमने फलाना फलाना कॉलेज से डिग्री प्राप्त की है, कृपा करके आप हमें आपके स्थान में, आपके दफ्तर में थोड़ा एक स्थान दीजिए। और फिर वहां पे सुनने में आता है यहाँ जगह नहीं है, आगे चले जाओ। फिर दूसरी जगह में जाते हैं और फिर वहां जाके उनको स्तुति करनी पड़ती है, मालिक की झूठी स्तुति करनी पड़ती है कि आपके दफ्तर में इसलिए आना चाहते हैं कि आपके बारे में हमने बहुत अच्छा सुना है, आप इतने महान व्यक्ति हैं, आप ऐसे हैं वैसे हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद समझाते हैं कि व्यक्ति आजकल इस तरह से झूठे प्रशंसा करने के लिए बद्ध हो जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों को उनकी स्तुति करनी पड़ती है। दूसरे हुए विडवराह, जो कि सुअर की तरह होते हैं। सुअर क्या होते हैं? जो किसी भी चीज को खाते हैं, वहां कोई भेदभाव नहीं करते कि हम क्या खा रहे हैं। आपने सुअर को देखा होगा, हमेशा कीचड़ में पड़े रहते हैं, कीचड़ में पड़े रह के मल मूत्र सब कुछ खा लेते हैं। तो जो मनुष्य अपने आहार में कोई भेदभाव नहीं करता, कोई विवेक बुद्धि का प्रयोग नहीं करता और जो मिले जो खा लेता है, इधर होटल भले वो इतने बड़े होटल में उसको अच्छे सजा धजा के मिर्च मसाला डाल के क्यों ना दिया हुआ हो और इसका बिल क्यों ना 500 रुपए का आया हो एक डिश का, लेकिन वो फिर वडवराह के का छोटा भाई कहलाता है। क्यों? क्योंकि कोई विवेक बुद्धि नहीं लगाता कि मनुष्य जीवन में मुझे कैसे आहार ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य जीवन तो केवल पत्रम पुष्पम फलम तो यम इन चीजों के लिए है, शुद्ध शाकाहारी चीजों के लिए है। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे नहीं मानता तो इस तरह से वो अनेक प्रकार के भोजन ग्रहण करने के लिए जाता है। अगर वास्तव में व्यक्ति केवल शाकाहारी भोजन से और खास करके कृष्ण प्रसाद से संतुष्ट होते तो जीवन कितना सरल हो जाता। लेकिन आजकल इसकी वजह से इनको गाय हत्या करनी पड़ती है और दूसरे पशुओं की हत्या करनी पड़ रही है, और इसके लिए आर्थिक दृष्टि से कितना नुकसान होता है, सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, हर दृष्टि से देखा जाए, पर्यावरण की दृष्टि से कितना नुकसान होते जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भेदभाव नहीं करते अपने खाने पीने में और इस तरह से सारे समाज को नरक की ओर ले जा रहे हैं। और फिर ऐसे लोग हैं समाज में जो एक शाकाहारी व्यक्ति को जो कि अच्छे घराने से आ रहा है उसको भी कहेंगे कि अरे आओ आओ तुम क्या बैकवर्ड हो, पिछड़े हुए समाज के हो, तुम आगे फॉरवर्ड समाज में आ जाओ, अभी तुम्हें ये सब खाना पीना चाहिए, होटल में आकर शराब पीना और थोड़ा जो मांसाहार करना, ये तो आजकल के जमाने का स्टाइल है, फैशन है, तुम्हें आकर करना चाहिए। और फिर उसकी झूठी प्रशंसा करते हो कि आप भी कितने अच्छे हो, हमारे साथ में आ जाओ। तो इस तरह से ऐसे लोगों के समाज में आकर फिर ये भी इनकी प्रशंसा करने लगता है। तो इस तरह से ये वड विराह। और फिर रहे उष्ट्र, उष्ट्र अर्थात ऊंट। ऊंट की विशेष गुण क्या होते हैं कि ऊंट को यह पता नहीं चलता है कि उसका हित किस में है और अहित किस में है। ऊंट खाने के लिए इधर उधर जाता है, और कभी कभी ऊंट क्योंकि ज्यादा करके मरुभूमि में, रेगिस्तान में रहता है, इसलिए वहां किस तरह के पेड़ पौधे मिलते हैं जिनमें कांटे होते हैं ज्यादा से, ये कांटे भी भगवान के भेंट हैं उन पौधों को, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए दिए गए हैं ताकि कोई भी आके उसे खा ना जाए। तो इस तरह से ये जो ऊंट होते हैं वो जाके इन कांटे वाले पौधों को खा जाते हैं, और जब खाते हैं तो वे कांटे उनको अंदर से चुभते हैं और चुभ कर उनके अंदर से खून बहता है, और जब खून का स्वाद उस ऊंट के जिह्वा पे आ जाता है तो ऊंट सोचता है कि भाई वाह, मजा आ गया, क्या स्वाद है, कितना अच्छा है, ये देखो कितना एक ऐसा निराला स्वाद है इसमें। ऊंट जानता नहीं कि मैं खुद का खून पी रहा हूं और इसी का स्वाद मुझे आ रहा, वो सोचता है कि ये तो कांटे के ये पौधे का स्वाद है जो खा रहा हूं, उस चीज का स्वाद है, क्योंकि ऊंट की बुद्धि कम होती है, तमोगुण का पशु होता है ऊंट। तो फिर ऊंट और ज्यादा खाने लगता है उस कांटे को, और कांटे जाके और ज्यादा चुभते हैं उसको अंदर से, और खून बहता है। तो ऊंट जो है इस तरह से भोग करता है, आनंद लेता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ऐसे आनंद में, तथा कथित आनंद में जो रमण कर रहा है, वास्तव में उसका कितना नुकसान हो रहा है, कितना खून बहाए जा रहा है वो भोग के नाम पर। तो इसी तरह से संसार में लोग होते हैं जो भोग में लगे रहते हैं, दिन रात भोग करना ही इनका काम होता है, और भोग करते करते नहीं जानते कि हमें, हम कितना खून बहा रहे हैं। और भोग का जो सबसे प्रमुख स्तर यह संसार में है वो है इंद्र तृप्ति मैथुन का। तो बताया जाता है कि ये वास्तव में इसमें कितना खून बहाना पड़ता है, शरीर के अंदर जो परिवर्तन होता है, खून का परिवर्तन होता है। तो इसलिए लोग इन कार्यों में बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन नहीं जानते कि वास्तव में हम कितना खून बहा रहे हैं अपना, ओजस शक्ति कितना बहा रहे हैं। जिस ओजस शक्ति का अगर हम संरक्षण करते तो हमारी बुद्धि कितनी तेज हो जाती, हमारी स्मरण शक्ति कितनी तेज हो जाती, और हम कितने सारे कार्य कर सकते, अच्छे अच्छे कार्य कर सकते अपने उद्धार के लिए, समाज के उद्धार के लिए। लेकिन समाज में अभी लोग केवल अपने खून को बहाने के लिए कार्य करते जा रहे हैं, और फिर ऐसे लोग एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा खून बहाता है उसको सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है, जो लोग नियमों को तोड़ते हैं ज्यादा, चार नियमों को, उनको ही ज्यादा ऊपर पद दिया जाता है। तो इस तरह से ऐसे खून बहाने लोग, बहाने वाले लोग एक दूसरे की प्रशंसा में लगे हुए हैं। एक ऊंट दूसरे ऊंट की प्रशंसा करता है, छोटा ऊंट बड़ा ऊंट सोचता है कि देखो कितना आनंद ले रहा है, कितना खून बहा रहा है, तो मुझे भी बहाना होगा, उतना ही खून बहाना होगा। तो छोटे ऊंट बड़े ऊंट की प्रशंसा करते हैं, जो ज्यादा भोग करते हैं वो उनकी ज्यादा स्तुति होती है। आजकल समाज में देखिए सारे जो उपन्यास मैगजीन अखबार होते हैं किनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों की जो कि बिल्कुल अधर्म के मार्ग में चल रहे हैं और जिनके अंदर सारे दुर्गुण हैं और सारे बुरी आदतें हैं। तो ये है ऊंट। और आखिरी चतुर्थ श्रेणी के रहे खरे ही मतलब गधा। गधा भी तो तमगुण का पशु है और पशुओं में से सबसे मूर्ख माना जाता है गधा, ऊंट से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि बिना वजह वो परिश्रम करता है, खामखा कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुबह से रात तक उसको जो धोबी है वो पीठ के ऊपर बोझ डालकर वो ढोने लगता है और फिर ये नहीं सोचता कि आखिर में मुझे चाहिए क्या। मुझे तो चाहिए केवल थोड़ा सा घास, थोड़ा सा घास तो मुझे कहीं भी मिल सकता है, तो इस थोड़े से घास के लिए मैं क्यों सुबह से रात तक परिश्रम करूं, ये नहीं सोचता है। तो आपको कहानी आपको कई बार हमने सुनाई होगी दो गधे मित्रों की, जानते हैं ना। ऐसे एक गधा था वो धोबी के पास काम करता था और दूसरा गधा था जो स्वतंत्र था। तो स्वतंत्र गधा जो था वो आके उसने पहले गधे से पूछा कि अरे तुम इस धोबी के पास क्यों काम करते हो, दिन रात धोबी तुमसे काम कराता है, मेहनत कराता है और अंत में थोड़ा सा घास दे देता है तुमको, दिन रात मेहनत करा के तुम्हें इतना ही मिलता है जो मुझे मिल रहा है, लेकिन मुझे तो भारी भारी बोझ ढोने की आवश्यकता नहीं है, तो तुम ये सब क्यों करते हो। तो दूसरे गधे ने जवाब दिया कि आगे मेरी उन्नति होगी इसलिए। तो पहला गधा कहने लगा अरे कैसी उन्नति होगी, हम भी तो सुने जरा। तो दूसरा गधा कहने लगा कि देखो ऐसा है कि एक बार मैंने सुना कि जो धोबी है अपनी पुत्री को डांट रहा था, पुत्री ने कोई गलती की थी और ये पिता ने उसे डांटा और कहने लगा कि कितनी बार मैंने तुम्हें बताया है कि ऐसा मत करो, लेकिन तुम बार बार करती रहती हो, तुम इतनी मूर्ख हो, और एक बार यही गलती तुमने की तो मैं तुम्हारा विवाह इस गधे से कराऊंगा। तो दूसरा गधा कहने लगा मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं, अगर इसके पुत्री से मैं विवाह कर लूंगा तो मेरा तो जीवन बन जाएगा, कितना दहेज मुझे मिलेगा, सारा इसका घर मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, फिर मैं ही तो घर का मालिक बन जाऊंगा, फिर बोझ ढोने के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। अभी सोचिए धोबी ने क्रोध में आकर पुत्री से ऐसा कह दिया, लेकिन क्या कभी धोबी ऐसा करेगा, क्या अपने पुत्री को विवाह में गधे से विवाह करा देगा। लेकिन फिर भी गधा इतना मूर्ख है कि समझता नहीं है, सोचता है कि वाकई वो दिन आएगा जब मैं विवाह करके सब मालिक बन जाऊंगा। तो उसी तरह से संसार में जो मूर्ख लोग होते हैं वो केवल सोचते हैं कि मैं परिश्रम करूंगा, गधे की तरह परिश्रम करूंगा सुबह से रात तक, और क्यों करेंगे, क्योंकि आगे चल के मुझे कुछ सुख मिलेगा, आगे चल के कुछ फल मिलेगा इसका, आगे चल के मैं बहुत भोग कर पाऊंगा, आगे चल के मुझे ये ऊंचा पद मिलेगा, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, आज मेरे पास इतने हैं, कल मुझे इतना पैसा मिलेगा, और जब इतना पैसा मिलेगा तो मैं इतना भोग करूंगा और फिर सब दूसरे लोगों को वश में करूंगा और फिर मेरा जीवन सफल हो जाएगा, फिर लोग मेरे पास आएंगे, मेरे सामने झुकेंगे, अखबारों में मेरा नाम आएगा और इस तरह से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो ये जो तथाकथित सुख है जिसके लिए लोग सुबह से रात तक परिश्रम कर रहे हैं, लोग नहीं जानते कि ये सुख कभी नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने साइन करके स्टैंप मार के छप्पा मार के सर्टिफिकेट दे दिया है कि ये संसार में तुम्हें सुख नहीं मिल सकता। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुख का आलय है, कितना भी परिश्रम क्यों ना करो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा इस संसार में, हे अर्जुन, कृष्ण भगवान बताते हैं। वास्तव में कृष्ण अर्जुन को नहीं बता रहे, हमें बता रहे हैं, अर्जुन को निमित्त बताकर बनाकर हमें बता रहे हैं कि खामखां व्यर्थ की परिश्रम न करो इस तथाकथित झूठे सुख के लिए। ज्यादा समय हमें भगवान की प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए, और कम से कम जो समय है अपने शरीर को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत जो संसार में परिश्रम करना पड़ता है वो हमें करना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये यस्मात ब्रह्म सौख्यम त्वरंतम। महाराज ऋषभदेव श्रीमद् भागवत में अपने पुत्रों को बताते हैं कि सुनो, ये मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपो दिव्यम, किस प्रकार की तपस्या? भोग प्राप्त करने के लिए जो तपस्या की जाती है वो तपस्या नहीं, गधा मजूरी की तपस्या नहीं। किसकी तपस्या? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या, जो भगवान के प्राप्ति के लिए तपस्या की जाती है वो तपस्या करनी चाहिए। और ऐसे तपस्या करने से क्या फल हमें मिलेगा? तपो दिव्यम पुत्र के ये न सत्वम शुद्ध ये, हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध सत्व गुण का की अनुभूति हमें हो सकती है। और फिर ऐसे शुद्धिकरण से क्या मिलेगा हमें? शुद्ध येद यस्मात ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम, अनंत दिव्य सुख या दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। केवल सुख की नहीं, ब्रह्म सुख। ये संसार का तथाकथित सुख जो है वो जड़ सुख है, जड़ पदार्थों का सुख है, जो वास्तव में सुख नहीं है लेकिन दुख का कारण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी बताते हैं गीता में, यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो संसार में जड़ पदार्थों के स्पर्श से जो तथाकथित सुख उत्पन्न होता है, हे अर्जुन, ये सच्चा सुख नहीं है वरन दुख कहलाता है। आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, इसकी शुरुआत होती है और अंत भी होता है। दुख योनय एवते, इससे दुख ही दुख उत्पन्न होता है हे अर्जुन, इसलिए इस सुख को सुख न समझो तुम लेकिन दुख समझो। इसलिए महाराज ऋषभदेव समझाते हैं कि ये जो सुख जिसकी बात मैं कर रहा हूं, हे मेरे पुत्रों, समझ लो पुत्र का, कि ये कैसा सुख है? ये संसार का सुख नहीं है, विषय सुख नहीं है, ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख अर्थात दिव्य सुख है, आत्मा का आनंद है। और ये आत्मा के सुख या आध्यात्मिक आनंद का लक्षण क्या है, इसका स्वरूप क्या है? अनंतम, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन विषय सुख का क्या गुण होता है? आदि अंतवंत है, इसकी शुरुआत है इसका अंत है। लेकिन महाराज ऋषभदेव कहते हैं कि आध्यात्मिक आनंद अनंतम, इसका कोई अंत नहीं है। तो इस तरह से यहां जो गधे के समान जो लोग होते हैं, इस दिव्य आनंद को नहीं जानते, नहीं पहचानते, और इसलिए दिव्य तपस्या नहीं करते। वो भी तपस्या करते हैं लेकिन विषय सुख के लिए, कष्ट के लिए। तो जो भी वो तपस्या करते हैं उनको क्या फायदा मिलता है? केवल कष्ट। कुछ तो मिलता है लेकिन मिलता है केवल कष्ट। तो इसलिए ऐसे जो गधे के समान लोग होते हैं सारे संसार में, जिनको मूढ़ कहते हैं कृष्ण भगवान भगवद गीता में, तो ये भी एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं कि आप कितना परिश्रम करते हो। ये कर्मयोगी है, जो जितना ज्यादा परिश्रम करता है उसको लोग कर्मयोगी कहते हैं। कई लोग मेरे सामने आके कहते हैं कि मेरा सिद्धांत तो यही है कि बस कर्म करते रहो, इसलिए मैं कर्मयोगी हूं। लेकिन ये तो भगवद गीता का सिद्धांत नहीं है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमें केवल कर्म करते रहने चाहिए सुबह से रात तक, नहीं। भगवान ने हमें बताया किस लिए हमें कर्म करना चाहिए। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। जो मेरे संतुष्टि के लिए कार्य किए जाते हैं हे अर्जुन, उनको यज्ञ कहते हैं, वही वास्तव में धर्म है। लेकिन जो स्वार्थ के लिए कार्य किए जाते हैं, मेरे लिए नहीं किए जाते जो कार्य, वो केवल बंधन के कारण बन जाते हैं। इसलिए कर्म तो करना है, सभी को करना है, संसार में जीने के लिए तो सभी को कर्म करना पड़ता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के संतुष्टि के लिए करना चाहिए। यही भगवद गीता का निष्कर्ष है। यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत कुरुष्व मद अर्पणम। जो भी करते हो हे अर्जुन, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, जो भी खाते हो पीते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो। ये गीता का उपदेश है। ये नहीं कि केवल कर्म करते रहो। कर्मयोगी वो नहीं है जो केवल परिश्रम करता है। कर्मयोगी वो है जो अपने परिश्रम का फल भक्ति भाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करता है, वो कर्मयोगी है। जब तक कि भक्ति भावना नहीं होगी और जब तक कि हम ये नहीं जानेंगे कि श्री कृष्ण हमसे चाहते क्या हैं, हम योगी नहीं हो सकते। चाहे वो कर्मयोगी हो, भक्ति योगी हो, किसी भी प्रकार की योगी क्यों ना हो। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवद गीता का संदेश समझ लें कि कृष्ण भगवान इसमें क्या कह रहे हैं। तो यहां हम देखते हैं कि या तो लोग आलसी होते हैं, बिल्कुल काम नहीं करते, या तो ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करते हैं। और ऐसे ज्यादा परिश्रम करने वाले समाजों में जो लोग ज्यादा काम करते हैं उनको ज्यादा ऊंचा स्थान दिया जाता है, आदर सत्कार दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं, जो अच्छे ढंग से सेवा करते हैं भगवान के लिए, वास्तव में उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, क्योंकि यही वास्तव में प्रशंसनीय कार्य है। कृष्ण के कार्य को करना, कृष्ण के आंदोलन को आगे बढ़ाना, लोगों के हृदय में कृष्ण भक्ति प्रदान करना, जिससे से सारा संकट कष्ट उनके जीवन में खत्म हो जाए, जिससे कि वो वास्तव में आनंद की प्राप्ति करें, अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं और जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर भगवान के धाम में लौटकर चले जाएं, ये होना चाहिए। नहीं तो जैसे संसार में है, झूठी प्रशंसा लेने में और देने में हमारा सारा जीवन चले जाएगा और फिर हमारा जीवन, मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, बोलते हैं, तो भगवान का गुणगान होता है। ऐसे गुणगान से हम ऐसे झूठे प्रशंसा करने और सुनने की जो हमारे हृदय में इच्छा है उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि सभी लोग भगवान के गुणगान में अपना समय बिताएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। किसी की कोई टीका टिप्पणी प्रश्न?
हरे कृष्ण। हम समाज में देखते हैं और यहाँ भी हम देखते हैं कि जब हम हमारा मंदिर का कुछ काम रहे या कुछ रहे, तो हम जो किसी के पास से काम करके लेना है तो हम उसकी भी प्रशंसा करते हैं। और तुकाराम महाराज भी बताते हैं कि आणी कांची स्तुति एक ब्रह्महत्या, कि जब दूसरे का, भक्तों का और भगवान का स्तुति छोड़ के दूसरे का जो हम स्तुति करते हैं तो एक ब्रह्महत्या का पाप लगता है। फिर भी हम उनके पास जाके उनकी स्तुति करते हैं और मंदिर के बारे में कुछ बताते हैं और उनके पास से कुछ डोनेशन या कुछ लेने की कोशिश करते हैं, तो ये भी एक प्रकार का पाप नहीं करते?
उद्देश्य में बहुत अंतर होता है। प्रभुपाद जी भी बताया करते थे कि कृष्ण भावना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, कृष्ण भक्त बनाने के लिए कभी कभी हमें लोगों की प्रशंसा करनी पड़ती है ताकि वो प्रेरित हो जाएं और किसी न किसी तरह से कृष्ण की सेवा में लग जाएं। हमारा उद्देश्य क्या है कि उनको किसी न किसी तरह से कृष्ण की सेवा में लगाएं। अगर थोड़ी बहुत प्रशंसा करके वो कृष्ण भक्ति में आगे प्रेरणा उनको मिल सकती है तो ठीक है। येन तेन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। किसी न किसी तरह से अपने मन को कृष्ण में केंद्रित करना है और दूसरों के मन को केंद्रित करने के लिए प्रयास करना है। तो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर कुछ करना हो, लेकिन अगर हमारा हृदय साफ हो और वो गलत नहीं है, फिर भी ऐसी प्रशंसा को भी सीमा में रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम ऐसे करते रहें प्रशंसा कि वो सीमा के बाहर ही हो जाए। तो इतनी ज्यादा झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे प्रशंसा का मतलब क्या है कि ठीक है, आप तो इतने दान देते हैं और अच्छे अच्छे कामों के लिए हमने सुना है कि आप कई जगह दान देते हैं, समाज में ऐसे लोगों की आवश्यकता है, हम बहुत आभारी हैं कि आपने हमें भी भगवान श्री कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें मदद की है, आपके आभारी हैं, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि आपके जैसा तो आज तक ना संसार में हुआ है और ना आगे होगा। आप जैसा व्यक्ति तो आप तो चांद के समान है जो यहाँ संसार में आए हैं और रोशनी फैला रहे हैं इस अंधकार में। आप पूर्णिमा के चांद की तरह हैं। ऐसे सब बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो झूठी प्रशंसा हो जाए। थोड़ा बहुत सभ्य तरीके से एक मर्यादा के तौर से जो हम प्रशंसा करते हैं उतनी प्रशंसा करना वास्तव में कोई खराब नहीं। और देखिए कि अगर कोई हमारी मदद कर रहा है, चाहे वो भक्त हो अभक्त हो, हमें कृतज्ञ रहना चाहिए ना। अगर कर रहा है और फिर हम उनको कहते हैं धन्यवाद, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये एक सभ्यता की निशानी है। लेकिन सीमा तक, सीमा में रखना चाहिए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है।
हरे कृष्णा, कल मैं एक न्यूज में देख रहा था कि ऐसे कई नेता हैं कि वो जेल में हैं, तो उनके नाम पे बहुत सारा केसेस है कि ऐसा खून के ऐसा वैसे। तो ऐसा नेता अगर चुन के अगर राज्य कर रहे हैं तो आगे 10,000 साल तक भक्ति टिक पाएगी?
वो सब आप सबके हाथ में है, हमारे हाथ में है। हम टिकने देंगे कि नहीं देंगे। अगर हम सब दृढ़ता से रहे, भक्ति करते रहे, अच्छी तरह से आचरण किया, अच्छे भक्त हम बने और दूसरों को भक्त बनाने के लिए हमने प्रेरणा दी और प्रचार अच्छी तरह से किया ताकि कृष्ण भावना सारे समाज में फैल जाएगा, तो क्यों नहीं टिक सकता। वो हमारे और आपके हाथ में है, हम क्या करना चाहते हैं। चोर डाकुओं की कमी नहीं है, खास करके कलयुग में, चाहे वो नेता के कुर्सी में बैठे हों या कहीं और बैठे हों। लेकिन अगर भक्तों की संख्या अधिक हो जाएगी तो फिर इनको भी वश में कर सकते हैं भक्त लोग। लेकिन भक्तों की संख्या अभी कितनी है, देखिए कितने हैं, कितने लोग हैं भागवत क्लास के लिए। तो हमारे और आपके हाथ में है, हम क्या कैसे करें। हम लोग अच्छी भक्ति करेंगे तो 10,000 साल क्यों, आगे तक भी बढ़ सकता है।
किसी को ज्यादा मेहनत कर कम समय पर थोड़ी मेहनत करने पे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और कोई किसी को ज्यादा समय तक करना पड़ता है। लेकिन हम जब उनको भक्ति का प्रचार करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें हमेशा मेहनत ही करनी पड़ती है, तो हम भक्ति कब करें। तो क्या उनका कर्म है ये?
कर्म के फल से होता है ना। थोड़े ऐसे होते हैं जो बिना परिश्रम किए उनको फल मिल जाता है। परिश्रम तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए थोड़े लोगों को कम करना पड़ता है और थोड़े लोगों को बहुत ज्यादा करना पड़ता है। जैसे जो जो सड़क में जो ठेला खींचते हैं, ठेला गाड़ी चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, दिन रात पत्थर तोड़ते हैं, दिन रात मेहनत करना पड़ता है, कितना कड़ा परिश्रम है, और मिलता कितना उनको दिन के अंत में, बहुत कम मिलता है। तो अपने कर्म के अनुसार ऐसे अवस्था में, ऐसे परिस्थिति में भगवान ने उनको डाला है। लेकिन जो भी हो, जैसे भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भक्तों का संग करें, भगवान की वाणी को श्रवण करें, समझें, और फिर बहुत ही अकलमंदी से अपने दिनचर्या का ऐसे प्रोग्राम बनाएं, कार्यक्रम बनाएं कि हमें भगवान के लिए भी समय मिलेगा। परिश्रम तो सभी को करना है, 24 घंटे सभी को हैं, भक्तों को 30 घंटे नहीं होते। तो 24 घंटे में कैसे हमें हम भगवान के लिए समय निकाल सकते हैं, वो हमें देखना है, अपनी बुद्धि हमें इस्तेमाल करनी है। जिस चीज को हम महत्व देते हैं उस चीज के लिए समय निकाल कर ही रहते हैं। तो अगर हमने इसके लिए समय निकाल दिया अच्छी तरह से, भले और कुछ त्याग करना पड़े, अगर हम जानते हैं कि यह पथ कितना महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग का, तो हम त्याग करेंगे। और त्याग तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, तो आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना है। इसलिए आपको कृष्ण चाहिए, वास्तविक आनंद चाहिए, भले भी आप कितने भी मेहनत क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो थोड़ी मेहनत कम करके यह मेहनत करनी चाहिए, ये फिर जीवन सफल हो सकता है। ठीक है। असेल आवड तल मिळेल सावड, म्हणजे सावड, हा हा, टाइम मिळेल, हा। जहां है चाह वहां है राह, वेर देर इज अ विल देर इज अ वे, ऐसे सब भाषाओं में कहावत है। हाँ, क्या प्रश्न है? माइक।
हरि बोल। हम जो संसार के जो तीन गुण हैं वो किसके
किस प्रकार से एक आदमी पर वो कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी हम जब जप करते हैं, नींद आना ये तो तामस गुण का एक ये होता है, फिर भी हम देखते हैं कि जप करते वक्त हम कितना भी प्रयास करें नींद आती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि उतना ही हम सोते हैं, फिर भी कभी कभी हम बिना प्रयास के भी अच्छा जप करते हैं, तो कभी कभी हम कितना भी प्रयास करें नींद आती है, ऐसा क्यों होता है।
जरूरी नहीं है कि नींद आनी ही चाहिए। कोई व्यक्ति आप देखते हैं कि जैसे कोई क्या उदाहरण क्या दे सकते हैं, देखें कोई सिनेमा थिएटर में जाता है और वहाँ कुछ बहुत ही तेज एक्शन चल रहा है, तो क्या वो सोएगा? आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा होगा। टीवी के सामने लोग बैठते हैं सोते हैं, जहाँ तक हमने देखा है, जहाँ से गुजरते जाते हैं कभी फाड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ में रुचि है, ध्यान लगा हुआ है उधर। उसी तरह से हम भी हरि नाम का ध्यान से श्रवण करेंगे तो हमें भी नींद नहीं आएगी। कभी कभी नींद इसलिए आ जाती है कि ध्यान भटक जाता है, और ध्यान जब भटक जाता है तो माया उधर रहती है, तमगुण फट करके पकड़ लेती है अपने को, पहली बात। लेकिन दूसरी बात, फिर भी आखिर यह शरीर है, शरीर की सीमा है, इसलिए शरीर को भी आराम की आवश्यकता है। और बहुत रात को सोए हो और नींद ठीक से नहीं हुई हो तो स्वाभाविक है थोड़ा बहुत नींद आ जाएगा। इसलिए सभी को चाहिए कि जल्दी सोएं रात को, ताकि जल्दी उठ सकें और अच्छी तरह से जाप करें। यह भी हमारी बुद्धि है, कैसे अपने समय को हम एडजस्टमेंट करते हैं ताकि अच्छी नींद होकर सुबह उठकर जल्दी से हम अच्छी तरह से जाप कर सकें। और इसके अलावा और एक भी है कि जैसे अपने प्रारब्ध हैं वैसे हमें गुणों का संग मिलता है। ऐसे कई भक्त हैं हमने देखे हैं, खास करके एक भक्त में स्मरण में आ रहा है, जो 10 सेकंड बिना सोए हुए बैठ नहीं सकते, 10 सेकंड। हम कोई बात बढ़ाकर नहीं बोल रहे, 10 सेकंड गिन के नहीं बैठ सकते, ठीक भी सोए, बड़े परेशान होते हैं वो भक्त, सिंसियर है भक्त, लेकिन कुछ शरीर का कुछ समस्या है, कुछ है, कुछ प्रारब्ध है, ऐसे जितना परिश्रम करता 10 सेकंड बन जाते, क्या कर सकते। तो एक ही उपाय है कि चल के करो, और तो कोई उपाय नहीं। पुराने जन्म के कुछ ऐसे तमगुण का संग हुआ होगा जिसका प्रभाव अभी तक है प्रारब्ध में, इसलिए आ रहा है। और हमें तो संसार में यही सिखाया है कि 8-10 घंटे सोना चाहिए स्वास्थ्य के लिए, और फिर ये ऐसा करो वैसे करो, आराम का जीवन ही सिखाया जाता है। तो तपस्या करने के लिए तो कोई सिखा नहीं रहा है, हमारी आदतें भी ऐसी हुई हैं कितने जन्मों से, तो उनको छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, और प्रैक्टिकल दृष्टि से अगर नींद आ भी रही हो तो ध्यान करना चाहिए, श्रवण ध्यान से करना चाहिए, और फिर भी नींद आ रही हो तो चल के करना चाहिए। लेकिन चलते समय भी जाप कैसा करना चाहिए, यूं नहीं कि हम इधर उधर देखते रहें कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, जब भी नीचे सर करके धीरे ऊपर नीचे ऐसे बस, ताकि जाप के ऊपर ही ध्यान हो, ध्यान इधर उधर न जाए, फिर नींद नहीं आएगी। ठीक है, और प्रश्न था किसी का?
हमारे जीवन में
थोड़ा दूर
जो कष्ट आता है वो हम अपने कर्म के हिसाब से आता है, तो भक्ति के जीवन में भी कष्ट आता है तो समझ जाते हैं कि वो भगवान की कृपा है, क्या फर्क है?
जब से व्यक्ति भक्ति में आ जाता है समझता है कि सभी कुछ भगवान की कृपा है, सभी कुछ जो भी होता है भगवान की कृपा है, जो हम पर बीत रहा है, जो हम कर रहे हैं वो नहीं, ऐसा नहीं कि हम कुछ गलत काम करें कहीं ये भी भगवान की कृपा है, नहीं, जो हमारे साथ हो रहा है तो वो भगवान की कृपा समझ के हमें चलना चाहिए। चाहे वो प्रारब्ध के हो, कर्म के हो, भगवान स्वतः कुछ कर रहे हो, वो भगवान देख रहे हैं अच्छी तरह से। जैसे जयद्वैत महाराज उस दिन बता रहे थे, भगवान अपनी आध्यात्मिक और भौतिक शक्तियों को दोनों मिश्रण करके मिला जुला कर कैसे कभी आध्यात्मिक शक्ति से आपको कष्ट दे सकते, कभी भौतिक से, जैसे जो सर्कस में जो गेंद ऊपर नीचे करके जो करते हैं जगलर्स, उसी तरह से भगवान अपनी विविध शक्तियों का प्रयोग इधर उधर 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 करके अपने हमारे उद्धार के लिए, हमारे भक्ति में प्रगति करने के लिए, वो हमें अलग अलग अनुभवों से गुजरने के लिए बद्ध करते हैं।
तो इनको हमें भगवान की कृपा ही स्वीकार करनी चाहिए, के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए मेरे साथ क्यों हो रहा है, अच्छा हो रहा है जो हो रहा है, भगवान सब जानते हैं क्यों हो रहा है, हमसे अच्छा भगवान जानते हैं कि हमारे साथ में क्यों हो रहा है। तो भगवान के ऊपर श्रद्धा रखनी चाहिए और उनकी कृपा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो कर्म से आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, भगवान जानते हैं। लेकिन अगर हो रहा है तो भगवान ने हमारे अच्छे के लिए ही किया है, ये श्रद्धा अवश्य होनी चाहिए। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय।